नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद सत्र के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। 18वीं विधानसभा का प्रथम सत्र कल से हो रहा है शुरू। पहले दिन नव निर्वाचित सदस्य लेंगे शपथ। और पूर्व मध्य रेलवे ने कोहरे को देखते हुए लंबी दूरी की 24 जोड़ी रेलगाड़ियों को कल से रद्द करने का निर्णय लिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वाह्न 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह कार्यक्रम की 128वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर किया जाएगा। इसके अलावा आकाशवाणी की वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी यह उपलब्ध होगा। कार्यक्रम को प्रसार भारती के वेब्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी सुना जा सकता है। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारण होगा। इसके तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। केंद्र सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। यह सत्र कल से शुरू होगा और 19 दिसंबर तक चलेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू संसद के दोनों सदनों के राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक का उद्देश्य सभी दलों के बीच सहयोग और बेहतर समन्वय बनाना है, ताकि लोकसभा और राज्यसभा का कामकाज सुचारू और प्रभावी रूप से चल सके। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा कर उसे पारित किए जाने की संभावना है। इन विधेयकों में परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025, बीमा विधि संशोधन विधेयक, भारत उच्चतर शिक्षा आयोग विधेयक और राष्ट्रीय राजमार्ग संशोधन विधेयक शामिल हैं। इस सत्र में संसद की 19 दिनों में कुल 15 बैठकें होंगी। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
18वीं विधानसभा का प्रथम सत्र कल से शुरू हो रहा है। सत्र के पहले दिन सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव सदन की सदस्यता ग्रहण करने के लिए शपथ दिलाएंगे। 2 दिसंबर को नए विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन होगा। 3 दिसंबर को विधानमंडल के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जाएगा। अधिवेशन को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान संबोधित करेंगे। 4 दिसंबर को राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार उत्तर देगी। 5 दिसंबर को दोनों सदनों में द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किए जाएंगे। इसके बाद विनियोग विधेयक पेश किया जाएगा। इधर 5 दिवसीय सत्र के दौरान विधानसभा भवन की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के विशेष प्रबंध किए गए हैं। पटना सदर के अनुमंडल पदाधिकारी गौरव कुमार ने विधानसभा के आसपास किसी तरह के प्रदर्शन, जुलूस और नारेबाजी पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। कांग्रेस पार्टी की सभी जिलाध्यक्षों की बैठक कल पटना में होगी। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम करेंगे। इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इस दौरान बैठक में कांग्रेस विधायक दल के नेता की घोषणा की जाएगी। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर ने बताया कि सभी जिलाध्यक्षों, कार्यकारी अध्यक्षों और मोर्चा संगठनों के प्रमुखों को इस बैठक में अनिवार्य रूप से शामिल होने को कहा गया है। गौरतलब है कि कल राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को महागठबंधन विधानमंडल और विधायक दल का नेता चुना गया है। सहकारिता मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा है कि किसानों को धान खरीद के बाद पैसे 48 घंटे के दौरान दे दिए जाएंगे। पटना में धान खरीद की समीक्षा करने के बाद मंत्री श्री कुमार ने कहा कि इस वर्ष खरीफ मौसम में धान खरीद का लक्ष्य 3,685 टन रखा गया है। उन्होंने कहा कि कल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रत्येक मंडल की समीक्षा की जाएगी। मंत्री ने अधिकारियों को कृषि संयंत्र योजना, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र और विभाग की ओर से संचालित योजनाओं की जानकारी लोगों को देने का निर्देश दिया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 2026 का वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। 2 फरवरी से इंटरमीडिएट और 17 फरवरी से मैट्रिक की परीक्षा आयोजित की जाएगी। समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए बताया कि 13 फरवरी तक इंटरमीडिएट की परीक्षा और 25 फरवरी को मैट्रिक की परीक्षा सम्पन्न होगी। उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षा में पहली बार AI चैटबॉट का प्रयोग किया जाएगा, जिससे छात्रों को परीक्षा से संबंधित जानकारी आसानी से प्राप्त होगी।
इस वार्षिक कैलेंडर के अनुसार आगामी वर्ष 2026 में इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आगामी 2 फरवरी 2026 से फरवरी 2026 के बीच आयोजित की जाएंगी और मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा का आयोजन आगामी 17 फरवरी से 25 फरवरी 2026 के बीच किया जाना प्रस्तावित है। समिति द्वारा यह लक्ष्य रखा गया है कि जो भी सूचनाएं सभी परीक्षार्थियों को उपलब्ध कराई जाती हैं वह अखबार के अलावा मोबाइल ऐप के माध्यम से और अन्य भी प्रकार के संचार माध्यमों से उनको उपलब्ध कराई जाएंगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल समिति द्वारा न सिर्फ चैटबॉट के माध्यम से उनको सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बल्कि इसके अलावा रजिस्ट्रेशन में भी आगामी वर्ष में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि निबंधन में होने वाली कुछ अनियमितताओं या विसंगतियों पर नियंत्रण किया जा सके।
पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का सम्मेलन आज रायपुर में संपन्न हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पहले दिन के सम्मेलन में भारतीय सुरक्षा व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन से राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठ व्यवहार और नवाचार साझा करने का महत्वपूर्ण मंच मिला है।
यह सम्मेलन नवा रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान में आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक तथा केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है विकसित भारत सुरक्षा आयाम। सम्मेलन के दौरान वामपंथी उग्रवाद, आतंकवाद रोधी कार्रवाई, आपदा प्रबंधन, महिलाओं की सुरक्षा तथा पुलिसिंग में फोरेंसिक विज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग जैसे प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श किया जा रहा है। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक भी प्रदान करेंगे। विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश के मौसम में लगातार उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के विभिन्न भागों में मौसम शुष्क बना रहेगा। इसके साथ ही अलग अलग स्थानों पर अगले 2 दिनों तक कोहरे के बने रहने के आसार हैं। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे कम दृश्यता 600 मीटर पूर्णिया में दर्ज किया गया। विभाग ने अपने अनुमान में कहा है कि अगले 2 दिनों के बाद विभिन्न स्थानों पर न्यूनतम तापमान में क्रमिक गिरावट होगी जिससे ठंड बढ़ेगी। अधिकतर स्थानों पर सुबह और शाम के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाये रहने की संभावना है।
अगले 2 दिनों के दौरान राज्य के 1 या 2 स्थानों में सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाये रहने की संभावना है।
इधर दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों से आ रहे चक्रवातीय तूफान दित्वा का असर रहने की संभावना है। इससे पटना सहित कई भागों में हल्के बादलों के छाये रहने की संभावना है। पूर्व मध्य रेलवे ने ठंड के दौरान कोहरे को देखते हुए लंबी दूरी की 24 जोड़ी रेलगाड़ियों को रद्द करने का निर्णय लिया है। मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि यह रेलगाड़ियां 1 दिसंबर से अगले वर्ष 28 फरवरी तक रद्द रहेंगी। उन्होंने बताया कि कुछ रेलगाड़ियों का परिचालन पूरी तरह और कुछ का आंशिक रूप से रद्द किया गया है। पदाधिकारी ने बताया कि रद्द किए जाने वाली रेलगाड़ियों में प्रयागराज मुजफ्फरपुर, कामाख्या गया, ग्वालियर बरौनी, हटिया आनंद विहार समेत अन्य रेलगाड़ियां शामिल है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही सप्ताह में 1 से 3 दिन तक रद्द रहने वाली गाड़ियों में गरीब रथ, नॉर्थ ईस्ट और महानंदा एक्सप्रेस ट्रेन समेत अन्य रेलगाड़ियां शामिल है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों की हवा लगातार प्रदूषित हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान AQI जांच में राजधानी पटना समेत 8 शहरों की वायु प्रदूषित मिली है। वायु प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अनुसार इस अवधि में पटना का समनपुरा क्षेत्र सबसे अधिक प्रदूषित रहा। यहां का वायु गुणवत्ता सूचकांक 318 दर्ज किया गया, जबकि छपरा शहर की हवा सबसे स्वच्छ पाई गई है। यहां का AQI 51 दर्ज किया गया है। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में अगले वर्ष जनवरी माह में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शिक्षा विभाग ने इसके लिए सभी विश्वविद्यालयों से रिक्तियां मांगी है। विभाग ने नए विषयों से संबंधित जानकारी भी मांगी है। राज्य में गुड़ उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए गन्ना उद्योग विभाग ने ऑनलाइन आवेदन लेने की तिथि 25 दिसम्बर तक बढ़ा दी है। पहले यह तिथि 25 नवम्बर तक निर्धारित थी। विभाग के अनुसार इच्छुक किसान और निवेशक ccs.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने जिले से संबंधित ईख अधिकारी या सहायक निदेशक से संपर्क कर सकते हैं। जहानाबाद जिले में साइबर अपराधियों ने एक अवकाश प्राप्त चिकित्सक से 27 लाख रुपए ठग लिए हैं। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। वहीं बक्सर जिले की पुलिस ने 18 से अधिक साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 64 मोबाइल, 5 लैपटॉप और कई डिजिटल उपकरण बरामद किए गए हैं। बिहार की वीमेंस अंडर 23 की टीम ने T20 ट्रॉफी एलाइट मुकाबले में हिमाचल प्रदेश को 10 रन से हराकर जीत दर्ज की है। चंडीगढ़ में खेले गए इस मुकाबले में बिहार ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 137 रन बनाए। जवाब में खेलने उतरी हिमाचल प्रदेश की टीम 20 ओवर में 127 रन ही बना सकी। राजधानी पटना के सीडीए कॉलोनी स्थित एक अधिवक्ता के घर से शास्त्री नगर थाना क्षेत्र की पुलिस ने 56 लाख रुपए की नशीली दवाओं के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। निगरानी की विशेष अदालत ने पुल निर्माण निगम के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता विनय कुमार सिंह को रिश्वत लेने के आरोप में 1 साल कैद के साथ 40,000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अररिया जिले के पलासी थाना क्षेत्र की पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक बस से स्मैक और 50,000 नकदी के साथ एक महिला और एक युवक को गिरफ्तार किया है। समस्तीपुर जिले के सिंधिया थाना क्षेत्र के भरहर चौक के पास हाई टेंशन तार की चपेट में आने के कारण एक ट्रक चालक की करंट लगने से मौत हो गई। दरभंगा जिले की पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी मंटुन चौपाल को 20 वर्ष की कारावास और 30,000 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, तेजस्वी चुने गए विपक्ष के नेता पर महागठबंधन में दिख रही दरार। हिंदुस्तान की सुर्खी है, बिहार बोर्ड की वार्षिक परीक्षा 2026 का कैलेंडर जारी, मार्च अप्रैल में आएगा परिणाम। इंटरमीडिएट की परीक्षा 2 और मैट्रिक की परीक्षा 17 फरवरी से होगी। दैनिक जागरण लिखता है, एयरबस के विमानों में तकनीकी खराबी, भारत समेत विश्वभर में कई उड़ानें लेट, यात्री परेशान। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, दूरसंचार विभाग ने जारी किया नया नियम, व्हाट्सएप मोबाइल में एक्टिव सिम से ही चलेगा, कंप्यूटर में 6 घंटे में होगा लॉग आउट। आज अखबार लिखता है, शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी में 72,000 स्कूलों में पहुंचे करोड़ों अभिभावक। राष्ट्रीय सहारा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हवाले से लिखा है, सैनिकों की तरह हर परिस्थिति में भूमिका निभाएं सिविल सेवक। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद सत्र के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। 18वीं विधानसभा का प्रथम सत्र कल से हो रहा है शुरू, पहले दिन 9 निर्वाचित सदस्य लेंगे शपथ। और पूर्व मध्य रेलवे ने कोहरे को देखते हुए लंबी दूरी की 24 जोड़ी रेलगाड़ियों को कल से रद्द करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा।